फिर आज हम निरोबिक स्पा के द्वारा एनर्जी बॉडी को क्लीन करना सीखेंगे। सबसे पहले अभी तक आपने जो सीखा उसको रिवाइज करवाऊंगा, फिर मेन टॉपिक पर चलेंगे। आपने सीखा कि सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां से एनर्जी सोल के पास और सोल से माइंड के थ्रू होते हुए चक्रों के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया तक एटीपी जनरेट करती है। ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, फिजिकल बॉडी, इसके अंदर अपने आप में एक हॉस्पिटल है। जहां तक हम हीलिंग की बात करें, अवर बॉडी हैव इनबिल्ट हीलिंग कैपेसिटी, ये कहना था फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स का, जिन्होंने मेडिसिन को इजाद किया, यानी कि वो खुद हीलिंग में विश्वास रखते थे। लेकिन ये हीलिंग होता कैसे है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए सबसे अच्छी साइंस है साइकोनिरोबिक की साइंस। साइकोनिरोबिक साइंस के अकॉर्डिंगली हमारा जो शरीर है इसके अंदर एक हॉस्पिटल है और इसी के अंदर एक फार्मेसी की फैक्ट्री है, शॉप है, यानी कि सारी मेडिसिन इसी के अंदर बनती हैं और सारे डॉक्टर्स इसी के अंदर हैं। ये डॉक्टर्स, इन डॉक्टर के साथ हम कंसल्टेशन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से डिजीज आ रही है। ये फार्मेसी जो है, मेडिकल शॉप, मेडिकल फैक्ट्री, इसको हमने बंद कर दिया है, इस वजह से मेडिसिन बाहर से लेनी पड़ रही है। जानना चाहेंगे इस हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको जोड़ रहा हूं हमारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के साथ। कौन है इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर, कौन है चीफ मेडिकल ऑफिसर, कौन है सीईओ और कौन है डॉक्टर्स, जरा देखते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा हॉस्पिटल है इसके जो डायरेक्ट ऑनर हैं, कौन है ऑनर, सुप्रीम डॉक्टर, डिवाइन पावर, वो इस पूरे हॉस्पिटल के मालिक हैं, ऑनर हैं। और चीफ मेडिकल डायरेक्टर वो कौन है, वो है सोल, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, ये है इसके चीफ मेडिकल डायरेक्टर। अब इसके बाद माइंड, इंटेलेक्ट, इनका क्या रोल है, माइंड जो है वो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का काम माइंड को दिया गया है। ऑर्गेनोग्राम को देख पा रहे होंगे, अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस ऑर्गेनोग्राम के अकॉर्डिंगली हमारे हॉस्पिटल के, बॉडी रूपी हॉस्पिटल के डायरेक्टर कौन है, ऑनर कौन है और कैसे ये बॉडी चलती है। इस पूरे हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं वो है सुप्रीम पावर, यानी कि गॉड, सुप्रीम डॉक्टर। इसके जो चीफ मेडिकल डायरेक्टर हैं वो है सोल, चीफ मेडिकल डायरेक्टर। चीफ मेडिकल डायरेक्टर ने खुद कुछ नहीं करते, सारा काम वो अपने मैनेजर्स और ऑफिसर्स के थ्रू करवाते हैं। माइंड, माइंड है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। इस माइंड के तीन सब कंपोनेंट हैं, इस माइंड के पास तीन मैनेजर्स हैं, एक है सब कॉन्शियस माइंड जो कि चीफ मैनेजर है, एक है कॉन्शियस माइंड जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। ये फाइव सेंसेस के साथ बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन इस चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को लाकर देता है, कॉन्शियस माइंड। और सब कॉन्शियस माइंड चीफ मैनेजर की तरह डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, और अनकॉन्शियस माइंड चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर है। ये तीनों ऑफिसर इस मेन ऑफिसर माइंड के अंदर में काम करते हैं और ये तीनों मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। फिर इंटेलेक्ट क्या है, इंटेलेक्ट है हमारा चीफ एडवाइजर, ये सही एडवाइस देता है। जब भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को जरूरत होती है तब ये देता है, लेकिन कई बार चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इनके ऊपर ज्यादा रिलाई करता है और इंटेलेक्ट की बात को नेग्लेक्ट कर देता है, उसकी एडवाइस को नहीं मानता। तो कई बार डिसीजन गलत भी होते हैं। यहां पर यह है सुपर कॉन्शियस माइंड, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ। आप भी जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर सीईओ होता है। अगर इस सीईओ की बात सुनी जाए, सुपर कॉन्शियस माइंड, इसके अंडर में 7 डॉक्टर्स हैं। ये डॉक्टर्स हैं हमारे 7 चक्र, एम्पावरिंग डॉक्टर, प्यूरिफाइंग डॉक्टर, जॉयफुल डॉक्टर, लवफुल डॉक्टर, पीसफुल डॉक्टर, एनलाइटनिंग डॉक्टर, ब्लिसफुल डॉक्टर। इन्हें डॉक्टर इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक एक डिपार्टमेंट को संभालते हैं, और अगर ये हेल्दी होंगे, ये ठीक से कार्य कर रहे होंगे, तो आपकी बॉडी के सभी डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली काम करेंगे। आपका जो फार्मेसी है उसके अंदर सारी मेडिसिन अपने आप इनबिल्ट फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, ये जो 7 डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रेड कलर, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट ऑरेंज कलर, सेक्रल चक्र, गैस्ट्रोलॉजी, डायबिटोलॉजिस्ट येलो कलर चक्र, कार्डियोलॉजिस्ट, डाइटिशियन हार्ट चक्र, और थ्रोट चक्र, ईएनटी एंड स्पीच स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, हमारा आज्ञा चक्र, और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सहस्राज चक्र। यानी कि हमारा शरीर एक हॉस्पिटल की भांति काम करता है। इसके अंदर माइंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, इंटेलेक्ट चीफ एडवाइजर है, और सुप्रा कॉन्शियस माइंड, जिसको हमें एक्टिवेट करना है साइकोनिरोबिक साइंस के द्वारा, तब आप इन 7 डॉक्टर्स के साथ मिलकर अपने हॉस्पिटल को ठीक तरीके से चला पाएंगे, सुचारू रूप से चला पाएंगे, सारी डिजीज को कवर कर पाएंगे, क्योर कर पाएंगे। लेकिन ये चक्र होते क्या हैं, इनको हम वैदिक विज्ञान से समझेंगे। एक वीडियो की मदद से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये चक्र होते क्या हैं और वैदिक साइंस में इन्हें क्या कहा गया है, क्यों विशिष्ट, मुनि विशिष्ट, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को इस साइंस को पढ़ाते थे, क्यों इस साइंस को लव और कुश को भी पढ़ाया गया, यानी कि वैदिक समय में यह हमारे एजुकेशन का एक हिस्सा होती थी। देखते हैं इस साइंस के बारे में वैदिक विज्ञान क्या बोलता है।
मनुष्य का ये शरीर बाहर से दिखने में चाहे जितना सरल और सहज दिखता हो, अंदर से ये उतना ही जटिल है। हमारा शरीर उससे भी ज्यादा जटिल है जितना कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने उसे अब तक समझा है। मानव शरीर की तमाम बीमारियों और समस्याओं का इलाज मेडिकल साइंस के पास है, लेकिन उन समस्याओं के पैदा होने का कारण और उन कारणों का निदान आज के चिकित्सा विज्ञान को नहीं पता। लेकिन हजारों साल पहले से हमारे ऋषि मुनियों के पास वो ज्ञान है जो न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा के संतुलन को बनाने में मददगार हो सकता है। मेडिकल साइंस ने मानव शरीर को अलग अलग अंगों के हिसाब से समझने की कोशिश की है, जबकि प्राचीन भारतीय योग में शरीर के अंदर स्थित चक्रों के महत्व को समझा गया है। ये चक्र मानव शरीर का वो आध्यात्मिक पहलू होते हैं जिन्हें मानना फिलहाल विज्ञान के दायरे से बाहर है। आइए समझते हैं कि शरीर के अंदर के ये चक्र आखिर हैं क्या। मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 प्रमुख चक्र हैं, लेकिन मूल रूप से इनकी संख्या को 7 ही मानते हैं। ये चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। आसान भाषा में आप इन्हें नाड़ियों के संगम या मिलने की जगह कह सकते हैं। शारीरिक विज्ञान के हिसाब से देखें तो नाड़ियों के ये संगम तिकोने आकार के होते हैं, सवाल उठता है कि त्रिकोणीय संरचना को चक्र क्यों कहा गया है, क्योंकि चक्र तो गोलाकार होता है। दरअसल नाड़ियों के संगम का संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम में गति से है, इसलिए इन्हें चक्र कहा जाता है। सवाल ये है कि आखिर ये चक्र इस शरीर प्रणाली में करते क्या हैं? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र जननेंद्रियों के नीचे शरीर के हिस्से के बीच नाड़ियों का ये तंत्र मूलाधार चक्र कहलाता है। शरीर के इस चक्र का संबंध नींद और भोजन से है। अगर किसी व्यक्ति की मूलाधार ऊर्जा प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में खाने और सोने से जरूरी कोई दूसरा काम नहीं होता। जो व्यक्ति अपने मूलाधार चक्र को जगाने में सफल हो जाता है वो नींद और भोजन की जरूरत से खुद को मुक्त कर सकता है। नींद और भोजन से जुड़ी समस्याओं को मूलाधार चक्र के संतुलन से ठीक किया जा सकता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। ये चक्र जननेंद्रियों के ठीक ऊपर होता है। अगर आपकी ऊर्जा स्वादिष्ठान में सक्रिय है तो आपके जीवन में भोग विलास और कामुकता बहुत ज्यादा होगी। ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ अधिक आकर्षित होता है। तीसरे नंबर पर है मणिपूरक चक्र। ये चक्र नाभि के ठीक नीचे होता है। जिन लोगों की शारीरिक ऊर्जा मणिपूरक चक्र में सक्रिय है वो कर्म प्रधान होते हैं। वो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। उन्हें लगता है कि श्रम से ही वो अपना भाग्य बदल सकते हैं। चौथे स्थान पर है अनाहत चक्र। ये हृदय के पास छाती के बीचों बीच होता है। जिन लोगों की ऊर्जा अनाहत चक्र में सक्रिय है वो क्रिएटिव किस्म के होते हैं। ऐसे लोग अच्छे गायक, अच्छे कलाकार या खिलाड़ी होते हैं। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र। गर्दन में सामने की तरफ गड्ढे जैसी धंसी हुई जगह में विशुद्धि चक्र होता है। जिन लोगों में ये चक्र सक्रिय होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर असंतुलन हो तो गले और सांस की गंभीर बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। मानव शरीर का छठा चक्र है आज्ञा चक्र। ये दोनों भवों के बीच की जगह पर होता है। किसी की ऊर्जा अगर आज्ञा चक्र में सक्रिय हो तो वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। उसकी याददाश्त मजबूत होती है। आज्ञा चक्र के असंतुलन से मस्तिष्क और ध्यान से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है सहस्रार चक्र। ये सिर पर शरीर के सबसे ऊपरी जगह होता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके सिर पर ऊपर की तरफ एक जगह नरम होती है, वहां पर हड्डी नहीं होती। यहीं पर सहस्रार चक्र स्थित होता है। ये परम आनंद का चक्र है। जो भी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को यहाँ तक पहुंचा लेता है वो ईश्वर के करीब पहुंच चुका होता है। दरअसल मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है। सबसे निचले मूलाधार चक्र से सबसे ऊपरी सहस्रार चक्र तक की ये यात्रा ही मनुष्य को महान बनाती है। कहते हैं कोई व्यक्ति मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ही पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज्ञा चक्र के आगे का कोई योगिक रास्ता ही नहीं है। इसके लिए कोई खास तरीका भी नहीं है। आज्ञा चक्र से आगे बढ़ने के लिए साधक को एक आध्यात्मिक छलांग लगानी पड़ती है। यह ऐसी छलांग है जिसे लगाने वाले
तो देखा आपने, वैदिक विज्ञान के अनुसार यह चक्र एक यात्रा है भौतिक शरीर से लेकर आध्यात्मिक आयाम तक। यानी ये चक्र केवल हीलिंग के लिए ही नहीं, आपकी भौतिक यात्रा से लेकर आध्यात्मिक यात्रा तक की भी एक जर्नी का हिस्सा है। यानी अगर मैं इसे इस तरीके से कहूं, फिजियोलॉजी साइकोलॉजी ये तो ये चक्र कंट्रोल करते ही हैं, उसके साथ साथ ह्यूमन इवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन, ये भी ये चक्र ही कंट्रोल करते हैं। ये चक्र केवल हमारे वेदों में ही वर्णन नहीं किया गया, हमारे वेदों से पढ़कर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने इन चक्रों को माना। वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई भी रिलीजन हो, क्रिश्चियनिटी की बात करें, इवन इस्लाम में भी चक्रों का वर्णन है। यह अलग बात है कि ओरिजिनलिटी हमारे वैदिक विज्ञान में इन चक्रों के बारे में आया, शुरुआत हमारे वेदों से हुई, बाद में अलग अलग रिलीजन्स ने, अलग अलग कल्चर्स ने इस चक्र विज्ञान को समझा और समझने के बाद अपनी अपनी लाइफ में अपने तरीके से इसका यूटिलाइजेशन किया। ये चक्र ह्यूमन इवोल्यूशन का भी एक हिस्सा है, यानी जब मनुष्य आदि मानव के रूप में इस पृथ्वी पर था तब उसकी कॉन्शियसनेस नीचे के तीन चक्रों में थी। शुरुआत में उसका मेन उद्देश्य केवल अपना सर्वाइवल होता था। क्यों? क्योंकि उस समय कॉन्शियसनेस रूट चक्र में थी, वो अपने आप को रक्षा करता था आग से, नेचुरल क्लाइमेटी से, बारिश से, पशुओं से, कंदमूल खाकर जीता था, जानवरों का शिकार करता था और उसे खाकर जीवन यापन करता था। धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस राइज हुआ अगले चक्र में, सैक्रल चक्र। फिर उसने समझा कि यस, सर्वाइवल से ऊपर प्लेजर की फीलिंग है, इमोशनल अटैचमेंट है। फिर वहां पर इमोशन एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होना शुरू हुआ और ये इमोशन प्लेजर फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हुआ। फिर वहां से मेल और फीमेल का रिलेशनशिप डेवलप हुआ, बॉन्डिंग शुरू हुई और इसके आगे की जर्नी शुरू हुई। फिर वहां से आगे शुरू हुआ, कॉन्शियसनेस ऊपर के चक्र में गई, येलो चक्र में, मैं, ईगो, अब ईगो आना शुरू हुआ, उसे समझ में आना शुरू हुआ कि मैं और तुम अलग अलग चीज हैं और मुझे अपने लिए जीना है। यहां से एक स्टेप सोसाइटी कल्चर इवोल्यूशन आगे बढ़ा, उसने आग की खोज की, आदि मानव ने आग की खोज की, फायर को बनाया और हथियारों को बनाना शुरू किया, पाषाण युग। फिर धीरे धीरे कॉन्शियसनेस जब ऊपर आई, अब उसे समझ में आया कि अकेले नहीं रहा जा सकता, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर कम्युनिटी बनाने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। अब वो छोटे छोटे झुंड बनाकर, समूह बनाकर रहने लगा, कबीले बनाकर रहने लगा, क्योंकि अब उसकी कॉन्शियसनेस यहां तक आ गई थी। फिर भाषा का डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि एक दूसरे की इमोशंस जो केवल पहले नॉन वर्बल तरीके से कम्युनिकेट करते थे, फिजिकल तरीके से एक्सचेंज करते थे इंफॉर्मेशन को, अब वो कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी तो अब भाषा का विकास हुआ। और भाषा के विकास के बाद फिर बहुत फास्ट हुआ, जब कॉन्शियसनेस यहां पर आ गई तो फिर साइंस डेवलप होना शुरू हुआ, जो जो चीजों की जरूरत पड़ती गई वो चीजें इस माइंड के द्वारा डेवलप होती गई। फिर उसे गॉड के साथ कनेक्शन फील होना शुरू हुआ, उसे समझ में आया कि मैं केवल शरीर नहीं और मैं केवल माइंड नहीं, माइंड के बियॉन्ड एक सोल भी हूं और सोल का कनेक्शन है सुप्रीम सोल के साथ। तो यहां से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हुई, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। फिर ग्रंथ लिखे गए, वेद लिखे गए, यानी कि जब कॉन्शियसनेस ऊपर आई, जब उसने रियलाइज किया कि मैं माइंड के बियॉन्ड सोल हूं और सोल का सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन है, वहां से फिर मेडिटेशन की शुरुआत हुई। और मेडिटेशन के दौरान जो नॉलेज गेन हुई, जो मैसेज डाउनलोड हुए, वो सारे मैसेजेस वेदों की तरह एक साइंस की फॉर्म में निकल कर आए। वेदों को कहा गया है कि वेद बताई गई साइंस है, वर्बल, और वर्बल से फिर किसी ने उसे राइट डाउन किया, यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी साइंसेस वेदों के फॉर्म में तभी आई जब मनुष्य की कॉन्शियसनेस यहां से और यहां तक पहुंची। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी फिर वेदों के आगे उपनिषद हैं और उपनिषद के बाद बहुत सारी बुक्स आई और बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स ने इन चीजों को समझकर एक स्टेप आगे लेकर गए इस कॉन्शियसनेस को, और वेस्टर्न वर्ल्ड ने चक्रों को मानना शुरू किया। इनफैक्ट उन्होंने इस चक्र को चक्राज नाम दिया। और जब हम इंडियंस चक्र को नहीं समझते, लेकिन जब उन्होंने चक्राज बोलकर इस साइंस को वापस वेस्टर्न वर्ल्ड में लेकर आया, आज बहुत सारे लोग वेस्टर्न साइंसेस की मदद से अपने चक्रों को समझने की कोशिश करते हैं। जबकि इसका ओरिजिन हमारी इंडियन वैदिक साइंस से हुआ है। जरा देखते हैं वेस्टर्न साइंस किस तरीके से इन चक्रों को मानता है और क्या क्या उसके पॉइंट्स बताता है, वो कैसे फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं और साइकोलॉजी को अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न साइंसेस। एक वीडियो की मदद से आपको इसके साथ जोड़ता हूं।
The entire universe is made of energy. The human body is a magnificent dynamo within this field. Countless healing systems have professed that health and wellness are created by the harmonious movement of internal energy called chi, prana, or life force. Long before the dawn of scientific materialism, ancient cultures discovered our human bodies have seven primary energy centers, the seven chakras. The concept of the chakra system dates far back into the spiritual traditions of Eastern religions, and the word chakra is the Sanskrit word for wheel or circle. Each chakra can be thought of as a spherical vortex of energy, acting as a channel for the energy of the universe to enter into the physical body and manifest as health, vitality, and balance. When your chakras are clean and balanced, you experience health and vitality. And when your chakras are hyperactive or closed, the result is disorder and disease. By becoming in touch with your chakras, you can tap into your biological systems and guide your body as well as your mind into the full potential of your being. Represented as revolving orbs of colorful light, these centers each correspond with different organs, glands, and physiological processes. Each chakra reflects a unique aspect of consciousness that interfaces with correlated physiology, creating a system for consciousness to inform the body. Let's explore the seven chakras, as well as the glands, organs, and concepts associated with each.
Subtle physiology. Recently, physicists like Akimov and Shipov, 1996, have discovered the existence of rotating fields known as torsion fields. These fields are not classical and have a scalar nature, informative field. The scalar nature is related to the informative aspect. The chakras of Vedic literature can be torsion fields capable of receiving and processing information from the most subtle fields. They are whirling vortices of subtle energy involved with the flow of higher energies into the cellular structures of the physical body, true energy transformers. According to the subtle physiology of Hindu philosophy, these energies flow through the nadis, 72,000 in all. The energy channels nourishing the nervous system, brain, spinal cord, and peripheral nerves. Anatomically, the chakras are associated with the nerve plexus and endocrine glands, transforming the energies of the higher dimensions into glandular hormonal production that influences the physiological and organic processes. The more subtle information, therefore, is transformed into chemicals by the glands as they are influenced by the scalar waves produced by the chakras. Each of the chakras is related to certain physical processes, organs, and psycho-emotional processes. The first has energetic relationships with the kidneys, large intestines, bladder, adrenal, and catabolic processes. The second is associated with the ovaries, prostate, uterus, and reproduction. The third has energetic relationships with stomach, spleen, pancreas, liver, gallbladder, small intestine, and anabolic processes. The fourth is associated with the thymus gland, immunity, and the heart. The fifth has energetic relationships with the lungs, throat, thyroid, and speech organs. The sixth is associated with pituitary, eyes, and middle of the brain. The latter has energetic relationships with the pineal and cerebral neocortex. Regarding the emotional and psychic aspects, the first chakra is linked to selfishness, competitiveness, and orientation toward survival. The second is linked to fear, sexual instinct, lust, and love. The third is linked to pride, anger, indignity, and resentment. The fourth is linked to universal love, feeling of loss, hurt, and jealousy. The fifth is linked to freedom of expression and frustration. The sixth is linked to mental clarity as well as cognitive confusion. The latter is linked to spiritual satisfaction and inner fulfillment, but also to spiritual despair and depression. Understanding the multidimensional nature of the human being, coupled with the application of new therapeutic modalities based on the use of subtle energies, will allow the adoption of more natural, less traumatic, non-toxic, and more efficient healing methods. Knowledge of how these energetic and informative fields interact within subtle anatomy and physiology is an essential prerequisite for the development of more effective and profound clinical and therapeutic strategies with regard to the multidimensional treatment of being.
The first chakra, called the root or base chakra, is located at the bottom of the tailbone, spinning along the axis of the spine. The Sanskrit name of the red root chakra is Muladhara. From the words Mula, which means root, and Dhara, which means support, this energy center is associated with survival, competitiveness, safety, and fear. This chakra is more closely related to the body's physical vitality than any other, pulling us down into the safety of our bodies and the shelter of the earth. This energy vortex works like the roots of a tree, grounding and connecting us to safety and stability. It may come as no surprise that the element of the root chakra is earth, the dense, steady force sustaining our existence. The root chakra is closely related to organs of elimination, the large intestine, kidneys, bladder, rectum, sciatic nerve, bottom of the feet, and adrenal glands. The exchange of prana, life force energy, can be understood anew within the context of chakras, informing a network of correlated glands, organs, and neural fibers. When unbalanced, this chakra will express itself as fear and insecurity. Grounding barefoot into the earth, or earthing, is a common, scientifically validated therapy associated with root chakra balancing. The porous glands on the soles, connected to pseudomotor neurons plugged into the sciatic nerve, are free to connect the body directly into a flow of healing negative ions that exist in overabundance on the surface of the earth. In this way, our bodies may be in a subtle energetic communication with the planet. Balanced, the root chakra will produce vitality, courage, and confidence. The sacral, or sex chakra, is located above the genitals and below the belly button, rotating along the spine. In Sanskrit, this orange chakra is called Swadhisthana, which translates to the place of the self. The sacral chakra is related to mental concepts such as emotion, desire, sexuality, flow, and change. The sacral chakra is related to reproduction, circulation, the uterus, ovaries, testes, pelvis, prostate, and the lower back. The element of the sacral chakra is water, representing the fluid transfer of energy within the body. When unfulfilled lust and negative feelings permeate your consciousness, this chakra is unbalanced, producing low back pain, impotence, ovarian cysts, and more. When clean and balanced, this chakra will create a powerful sex drive, creativity, and a supreme enjoyment of life. Your third chakra, the navel or solar plexus chakra, can be thought of as an orb of vibrant yellow light rotating along the spine between the belly button and the heart. The navel chakra is called Manipura, which translates to lustrous gem, with related mental concepts such as power, self-control, joy, pride, unworthiness, resentment, determination, and peace. This energy center is the seat of your self-worth. The navel chakra's element is fire, the force that causes energy to change form, such as the conversion of wood into heat, and significantly, the conversion of food into energy, physically This chakra is related to the stomach, spleen, pancreas, liver, gallbladder, and small intestine. It is also heavily correlated with the gut flora and gastrointestinal tract microbiome. When this fiery chakra is unbalanced, the physical body can develop gastric ulcers, diabetes, IBS, and other problems with digestion. When clean and balanced, like a brilliant star in the abdomen, this chakra will result in courage, determination, healthy digestion, strong metabolism, and an unshakable self-worthiness. The fourth chakra, the heart chakra, is a bright green orb of light rotating along the spine in the middle of the chest. The heart chakra is at the center of the chakra system and is therefore generally thought of as larger than all of the other chakras. The heart chakra is the seat of unconditional love, compassion, limitless life, goodwill, and the tranquility found in balance. The heart chakra is at the core of your liveliness and is thought of as the most intimate home for the chi, or life force, called the anahata, which translates to unhurt. This chakra is related to the heart and thymus. With the element of air, this chakra represents the unseen medium that informs and connects all the energy of life. The heart chakra can become unbalanced and result in heart diseases, immune system diseases, chronic fatigue, envy, possessiveness, and grief. When balanced and clean, this chakra becomes the engine of the physical body and produces experiences of universal and self-love, compassion, and interconnectedness. The fifth chakra, called the throat chakra, is located in the middle of your throat, spinning along the spine in the form of a bright blue orb, related to sound, vibration, listening, communication, self-expression, and frustration. This chakra is correlated with the throat, speech organs, lungs, and thyroid. Called Vishuddha, meaning especially pure, the fifth chakra embodies the element of sound, epitomizing the essence of musical harmony. When unbalanced, this energy center will create difficulties in communication and produce frustration, thyroid problems, sore throats, hearing problems, bronchitis, asthma, and more. When clean and in tune, all the energy that passes through its vortex manifests as effortless communication, artistic expression, relief, and relaxation. The sixth, brow, or third eye chakra, is an enchanting indigo orb rotating in the center of the brain, called Anya, which means perceive, command, or beyond wisdom in Sanskrit. This energy center is associated with clarity, understanding, evolution, intuition, intelligence, and psychic powers. The physical correlates of this chakra are the midbrain, hindbrain, eyes, microbiome in the sinonasal cavity, and pituitary gland. When unbalanced, migraines, sinus problems, visual defects, and some ear problems can emerge. Healthy and balanced, the brow chakra produces illumination, the ability to see things clearly, patience, and insight. The brow chakra's element is light, the force that reveals the true nature of all things. The seventh and final chakra, the crown chakra, called Sahasrara, is Sanskrit for thousand-petaled. This violet orb is seated at the top of the skull, gracefully rotating and connecting our human bodies to a pure universal intelligence. Considered as the seat of pure consciousness, the crown chakra correlates with the neocortex, pineal gland, and the thalamic gate. An unbalanced crown chakra is associated with many mental disorders and depression. When balanced and open, the crown chakra serves as the bridge into a field of pure being, happiness, and enlightenment. The element of the crown chakra is consciousness itself, the energy everywhere and in everything, effortlessly connecting the universe to itself.
तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि कौन से चक्र के इंबैलेंस से कौन सी डिजीज आती है और कौन सी साइकोलॉजी। इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझिए कि आपके शरीर में कौन सी प्रॉब्लम है फिजिकल बॉडी के लेवल पर। दूसरा समझिए आपकी कौन सी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, क्या कॉन्फिडेंस की कमी है, विल पावर की कमी है, या इरिटेशन ज्यादा होता है, एंगर ज्यादा होता है, इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, विजन क्लियरिटी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके कौन से चक्र से रिलेटेड हैं, तब तब आप उसे ठीक नहीं कर सकते। ये जो चक्र हैं, वैदिक विज्ञान में बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। समझाने के साथ साथ अब ये जो डिफरेंट साइंसेस के द्वारा इन्हें हील करना भी सिखाया गया है। चक्रों को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए बहुत सारे विज्ञान हैं, लेकिन साइकोनिरोबिक एक ऐसी साइंस है जिसके द्वारा आप कहीं पर भी कभी भी बहुत ही कम समय में इन चक्रों को डे टू डे लाइफ के लिए बैलेंस और एनर्जाइज कर सकते हैं। ये होते कहां हैं, दिखाई नहीं देते। कैसे, हम इन्हें पहले विजुलाइज करने से पहले अपने माइंड में एक इमेज बना ले कि ये कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। जैसे फिजिकल बॉडी है, ऐसे ही हमारे अंदर एक एनर्जी बॉडी है और इसके अंदर 72,000 नाड़ियां सब जगह फैली हुई हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग ये चक्र होते हैं। ये चक्र एक एग्जॉस्ट फैन की तरह होते हैं जो क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी। जब ये क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लेकर आता है और जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये नेगेटिव एनर्जी को बाहर एक्सपेल करता है, छोटे छोटे एग्जॉस्ट फैन। और अगर ये एग्जॉस्ट फैन एक सही वोल्टेज पे, सही डायरेक्शन में और सही स्पीड के साथ रोटेट हो रहे होंगे तो हमारा बायो इलेक्ट्रिकल करंट, लाइफ फोर्स एनर्जी मेंटेन रहेगा। आने वाला जो निरोबिक स्पा होगा, साइको निरोबिक साइंस का मेडिटेशन होगा, वो रास रंग और नाद, इन तीनों साइंस का कॉम्बिनेशन होगा, मुद्रा विज्ञान, साउंड फ्रीक्वेंसी और कलर विजुअलाइजेशन का। लेकिन हम उस तक पहुंचने से पहले पहले हम ये समझेंगे कि ये चक्र दिखाई कैसे देते हैं, कैसे होते हैं। एक वीडियो प्राणिक हीलिंग के द्वारा, जो प्राणिक हीलिंग के द्वारा बनाया गया है, उसके द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, विजुअलाइज करवाना चाहता हूं कि ये चक्र दिखते कैसे हैं और ये ऑरा होता कैसा है। क्योंकि ये सारी पिक्चर जब आपके माइंड में बन पाएगी तभी आप इन्हें प्रॉपर वे में विजुअलाइज कर पाएंगे और विजुअलाइज करके हील कर पाएंगे। जुड़िए एक वीडियो के साथ। की तरह रोटेट होते हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी। फ्रंट साइड में भी चक्र का ओपनिंग होती है और बैक साइड में भी। क्राउन चक्र और रूट चक्र ये दोनों एक होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये ऑरा को देखा गया है बायो फील्ड के द्वारा और ये इसके चक्र दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए हवा मंडल रेडियन लाइव वीडियो लिया गया है बायोफील्ड व्यूअर की मदद से, जिसके द्वारा को दिखाया गया है। बायोफील्ड अलग अलग लेयर, क्योंकि एक एक चित्र की तरह से एक एक कलर होता है बायोफील्ड के अंदर। ये बैक साइड के अंदर तो आपने देखा कि हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसका एक इनर सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल होता है। आउटर सर्कल में एक फैदरी लेयर्स होती हैं, जो ऐसे रोटेट होता रहता है। ये समझिए, ये हमें प्रोटेक्शन देता है नेगेटिव एनर्जी से, डिजीजेस से। जब जब ये ऑरा डिस्टर्ब होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा, तो नेगेटिव एनर्जीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। जैसा हमने कल भी समझा था क्वांटम फिजिक्स की मदद से, बायोफील्ड की मदद से, कि इंफॉर्मेशन और एनर्जी दोनों स्टोर हैं इस बायोमैग्नेटिक फील्ड में, और ये एनर्जी और इंफॉर्मेशन का हम आज प्रैक्टिकल यूज कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद के साथ। इसीलिए मैंने बायोफील्ड व्यूअर को दिखाया, दूसरी डिवाइस जीडीवी बायोवेल, जिसके द्वारा आप अपने चक्रों का एनालिटिकल स्टडी कर सकते हैं, कौन सा चक्र कितना अलाइन है, कितना बैलेंस्ड है और उसकी एनर्जी कितनी है। लेकिन चक्रों को अलाइन करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन साइकोनिरोधिक साइंस एडवांस्ड राजयोग का एक मेथड है। राजयोग मतलब विजुअलाइजेशन के द्वारा अपनी कॉन्शियसनेस को गॉड की कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ना। मेडिटेशन क्या होता है अभी तक हमें यह नहीं मालूम है। पहले हम यह समझेंगे कि मेडिटेशन होता क्या है और मेडिटेशन करने का स्टेप क्या होता है और मेडिटेशन कैसे करें। फिर उसके बाद एडवांस्ड पार्ट है कि साइकोनिरोबिक निरोबिक स्पा मेडिटेशन कैसे करें। पहले हमें बेसिक स्टेप मेडिटेशन के सीखने होंगे। ये मेडिटेशन के स्टेप भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से वन बाय वन सिखाऊंगा। देखते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है और किया कैसे जाता है।
जब ध्यान कैसे दिमाग से ज्ञान बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है। छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हो। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां, अंदर की या बाहर की, मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है, मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न ही उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए, ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए, सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार, वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है।
तो आपने मेडिटेशन को समझा, मेडिटेशन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मेडिटेशन कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय जो होता है, जब पूरे वातावरण में शांति होती है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जब मैक्सिमम लोग सोए हुए होते हैं, नियर अबाउट 5 to 6 जो इस समय होता है, ये बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं, आप दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 7 बजे 8 बजे किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग में आप मेडिटेशन करके जाएंगे, तो दिन भर चार्ज रहेंगे, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, फोकस अच्छा रहेगा। मेडिटेशन बैठकर भी किया जा सकता है, लेटकर भी किया जा सकता है। प्री रिक्विजिशन या कंडीशन यह है कि स्पाइन और शोल्डर स्ट्रेट रहना चाहिए। या तो आप किसी हार्ड सरफेस पर सो जाएं, जमीन पर कोई नीचे चटाई या दरी बिछाकर, या किसी चेयर की मदद से, या जमीन पर बैठकर कर सकते हैं। स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि हमारी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी स्ट्रेट रहेंगी तो इसमें से मेजर एनर्जी फ्लो होता है, फिर यहां से चक्रों में जाता है और चक्र से हमारी 72,000 नाड़ियां खुलती हैं। मेडिटेशन करने के लिए हमें पहले शुरुआत में हल्का शरीर को वार्म अप कर लेना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज योग कर रहे हैं, साथ में मेडिटेशन कर रहे हैं, तो पहले एक्सरसाइज करें या वार्म अप करें, ताकि बॉडी की जो मेरिडियंस हैं वो ओपन हो जाएं, एनर्जी पॉइंट्स ओपन हो जाएं। इसके बाद फिर आपको अगला पार्ट होना चाहिए प्राणायाम, यानी कुछ थोड़े बहुत डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसके द्वारा लाइफ फोर्स एनर्जी नाड़ियों में प्रवाह होनी शुरू हो जाए। और तीसरा पार्ट होता है, वो है मेडिटेशन, यानी पहले एक्सरसाइज, फिर प्राणायाम, फिर मेडिटेशन। इस प्रकार से इस सीक्वेंस में जब आप करेंगे, तो आप मेडिटेशन की गहराइयों में जा पाएंगे। मेडिटेशन करने के लिए जो इस विधि में बताया गया है कि ब्रेथ, हमारी सांसों का कंट्रोल हम कर सकते हैं, विचारों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एक मिथ है मेडिटेशन को लेकर कि मेडिटेशन का मतलब है थॉटलेसनेस। नहीं, थॉटलेसनेस नहीं होता, थॉट्स तो आएंगी ही आएंगी। थॉट्स को कम करके उन्हें रैंडमली, जो थॉट्स आ रही हैं उन्हें हटाना और उन्हें एक जर्नी पर लेकर चलना, एक डायरेक्शन देना, वो है मेडिटेशन। तो शुरुआत में जब हम मेडिटेशन करते हैं, आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करने का मतलब होता है धारणा प्रत्याहार। योग में कहा गया है प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये स्टेप होते हैं मेडिटेशन के। प्रत्याहार मतलब बाहरी सेंसेस, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन्हें बंद करना। कैसे बंद कर सकते हैं? कि आंखों को बंद करेंगे तो उसे कोई विजुअल नहीं मिलेंगे, विजुअल नहीं मिलेंगे तो ये कंसंट्रेशन में मदद करेगा। आंखों कानों को कैसे बंद कर सकते हैं? कि बाहरी आवाजें हमें डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए यहां पर कुछ नाद, नाद मतलब साउंड फ्रीक्वेंसी अगर दे दें तो हमारा ध्यान डिस्टर्ब नहीं होगा। टेस्ट स्मेल, इसके लिए क्या कि स्मेल के लिए हल्का सा अरोमा उस प्लेस में आप लगाएं जहां पर मेडिटेशन करना चाहते हैं, ताकि आपको एक अच्छी स्मेल आती रहे और आपका मन प्रसन्न रहे। फिर बात आती है काइनेस्थेटिक सेंस, स्किन, ये बहुत डिस्टर्ब करता है मेडिटेशन करते समय। तो ध्यान रखें कि जहां आप मेडिटेशन कर रहे हैं वहां पर किसी प्रकार के इंसेक्ट, मच्छर या मक्खी वगैरह ना हो, जिसे आप डिस्टर्ब हो बार बार। टेम्परेचर कमरे का ऐसा हो कि ना ठंडी लगे ना गर्मी लगे, ताकि आप उस समय अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के ध्यान की गहराइयों का अनुभव कर सकें। ये प्री रिक्विजिशन है, स्टार्टिंग है। जमीन पर कर रहे हैं तो कोई मैट या कपड़ा जरूर बिछा लें, डायरेक्ट जमीन के कॉन्टेक्ट में ना आए। ऐसा स्पिरिचुअल साइंसेस में कहा जाता है कि अगर आप एक ही जगह पर करते हैं मेडिटेशन, एक ही समय में करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि जिस जगह पर आप करेंगे धीरे धीरे वो भी चार्ज होना शुरू हो जाती है। और एक ही समय में करने का फायदा यह होता है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हैबिचुअल हो जाता है और हमारी हार्मोन्स और बायोलॉजिकल रिदम मेंटेन होना शुरू हो जाती है मेडिटेशन के बाद से। ये कुछ चीजें हैं जो मेडिटेशन करते समय हम ध्यान रखें। शुरुआत में जब आप मेडिटेशन करेंगे विचार बहुत ज्यादा आएंगे, आंखें बंद करेंगे तो कुछ थॉट्स आएंगे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उन्हें कहें आइए और जाइए, यानी विचारों को आने दें और जाने दें। और विचारों से मुक्ति पाने का तरीका है कि आप अपना ध्यान श्वास पर लेकर आए, जैसा इस मूवी में बताया गया कि आप ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप सांसों पर ध्यान लेकर जाएंगे, आती हुई सांस, अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, तो आपको महसूस होगा कि आपके थॉट्स कम होते जाएंगे। ये योग में भी बताया गया है कि हम अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल किसके पास में है, कंट्रोल हम ब्रेथ को कर सकते हैं। और ब्रेथ के द्वारा हम अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में ध्यान ब्रेथ पर रहना चाहिए ताकि धीरे धीरे विचार कम हो जाएं। फिर आप लाइट विजुअलाइजेशन के द्वारा, यानी कि जो भी आप मेडिटेशन करना चाहते हैं पहले आप डिसाइड कर लें इस मेडिटेशन का मोटो क्या है, मैं किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेडिटेशन करना चाह रहा हूं। यानी कि जैसे आप अपने शरीर को हील करने के लिए चाह रहे हैं या फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड अलग अलग कोश में जाना चाहते हैं, या अपने माइंड के साथ जुड़ना चाहते हैं, या इंटेलेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, या गॉड के साथ जुड़ना चाहते हैं। स्टार्टिंग में आपको फिजिकल बॉडी के प्लेन पे मूव करना होगा, क्योंकि जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, बिगिनिंग करते हैं, उस समय ध्यान डीप नहीं होता। तो स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, बैठकर या लेटकर पैर की उंगली से लेकर धीरे धीरे कॉन्शियसनेस को सिर के ऊपर तक लेकर जाएं। और जब आप नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं कॉन्शियसनेस को, तो ध्यान रखें ऐसा मूव करें कि जितने पार्ट से आप कॉन्शियसनेस को ऊपर लेकर जा रहे हैं उतना नीचे का हिस्सा पूरा रिलैक्स हो गया। तो जब आप ऐसा महसूस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो बॉडी प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन की मोड में आएगी, जिसकी वजह से ध्यान आपका डीप होना शुरू होगा। जब आप फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड पूरा यहां से लेकर वहां तक चले जाएं, अगला पार्ट होता है विजुअलाइजेशन ऑफ जो भी आप इमेजिनेशन करना चाह रहे हैं। साइकोनिरोबिक साइंस में लाइट के द्वारा मेडिटेशन करवाया जाता है, लाइट एज। अभी हम लाइट एज में हैं। लाइट एज का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन एज, यानी कलयुग से सतयुग का बीच का ट्रांजिशन फेज। और इस फेज में स्पिरिचुअल साइंस बताती है गॉड को याद करने का, भगवान को याद करने का, भगवान के साथ जुड़ने का तरीका केवल एक है, वो है लाइट। लाइट के द्वारा ही हम गॉड की कॉन्शियसनेस को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। इसीलिए साइकोनिरोबिक में सोल को भी एक लाइट की फॉर्म में दर्शाया गया है और गॉड को भी एक लाइट की फॉर्म में ही दर्शाया गया है। स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, SELF, सेल्फ, सोल। एंड गॉड क्या है? सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, वो सोर्स है। और वहां से हमें उस एनर्जी को टैप करना है, किसके द्वारा? सोल के द्वारा। सोल और माइंड, सोल क्या है? रिसीवर है, एक एंटीना है। और इस सोल से गॉड के बीच में कनेक्शन कौन सा है? हमारा सहस्रार चक्रा, जो हमारा सहस्रार चक्र है, क्राउन चक्र, उसमें 1000 पेटल्स होती हैं। उन्हें ऐसा महसूस करें कि वो 1000 चिप्स लगे हुए हैं, सिम लगे हुए हैं, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हैं। और जब भी आप क्राउन चक्र को ओपन करें तो महसूस करें उसे कि सर में हल्की वाइब्रेशन महसूस होंगी आपको, कुछ हल्का भारीपन या हल्कापन, हर व्यक्ति को अलग अलग टाइप की वाइब्रेशंस फील होंगी। क्योंकि अब आपका क्राउन चक्र ओपन हुआ है, तब आप ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्मांड से, गॉड से, यूनिवर्स से आपने जो एनर्जी ली क्राउन चक्र के थ्रू, वो सोल से तो लिया, अब सोल के बाद आपको माइंड का रोल आता है, यानी माइंड के द्वारा आपको विजुअलाइज करना है। माइंड और इंटेलेक्ट ये दोनों जुड़कर विजुअलाइज कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़कर हमें विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन लेकर आना है, और फिर वो लाइट की फॉर्म में विजुअलाइज करते हुए ये जो हमारे अंदर की 7 लाइट हैं, इन्हें वन बाय वन एक एक करके इन्हें इलिमिनेट करना है, इन्हें बैलेंस करना है, इनको अलाइन करना है। साइकोनिरोबिक निरोबिक स्पा में दो अच्छी चीजें हैं कि इसमें फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी और मेंटल बॉडी तीनों का यूज एक साथ होता है, क्योंकि आप माइंड और इंटेलेक्ट से ही विजुअलाइज करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, और फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी दोनों के अंदर की जर्नी पर लेकर चलते हैं साइड बाय साइड, मतलब एक एक चक्र में लेके चलते हैं, फिर उसके फिजिकल बॉडी के पार्ट्स में लेके चलते हैं, फिर अगले चक्र में फिर उसके फिजिकल पार्ट और फिर एनर्जी बॉडी। यानी आप एक ही मेडिटेशन में अपने फिजिकल बॉडी को भी हील कर रहे हैं, एनर्जी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, माइंड और इंटेलेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो माइंड इधर उधर भाग रहा था आपने उसे गाइडेड जर्नी दिया, और इतना करने के बाद जब आपका कंप्लीट मेडिटेशन हो जाए निरोबिक स्पा, अगला स्टेप है फिर आप अपने इंटेलेक्ट के साथ, यानी कि फोर्थ कोश, 4 नंबर का जो कोश है विज्ञानमय कोश, विजडम बॉडी, उसके अंदर एंटर करके ऐसे प्रश्नों का आंसर जाने जो आपने आज तक आपको मिला नहीं है, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। क्योंकि आप मेडिटेशन आधा घंटा कर लिए हैं, अब आपके चारों कोश एक्टिव हो गए हैं, जब आप अब वन बाय वन क्रॉस करके इंटेलेक्ट के साथ जुड़ेंगे, आप देखिएगा आपको बहुत सारे मैसेज डाउनलोड होंगे। यह है डीपनिंग ऑफ मेडिटेशन, एक स्टेप आप आगे चले गए, डीप चले गए, फिर आप उतना करने के बाद एक स्टेप और बियॉन्ड जाएं और महसूस करें कि आपकी एनर्जी एक्सपांड हो रही है, अब आप ब्लिस लेयर में एंटर कर गए हैं, आनंदमय कोश में, और उस समय पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें और गॉड के साथ अपने कनेक्शन को फील करें और महसूस करें कि आप वायलेट कलर की लाइट में पूरा ऐसे बैठे हुए हैं और वो आपके चारों तरफ फैल गई है। वायलेट कलर की लाइट में अपने आप को नहाते हुए देखें शावर में, जैसे आप बात ले रहे हो, और इस समय कोई भी प्रश्न ना रखें, केवल उस लाइट को अनुभव करें और अपने शरीर के अंदर वो ब्लिस वाली जो फीलिंग है उसका एक महसूस करें, उस फीलिंग को, वो फीलिंग है ब्लिस की फीलिंग। लेकिन हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको ये फीलिंग ना आए, लेकिन जब आप लगातार 21 डेज तक इसे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं 100% श्योर हूं कि आपको किसी न किसी दिन वो ब्लिस की फीलिंग जरूर आएगी। एक स्टेप आगे चलते हैं, आज हम रूट चक्र का मेडिटेशन नहीं करेंगे, आज हम करेंगे निरोबिक स्पा, सातों चक्रों का। आज हमने सातों चक्रों के बारे में सीखा, इन सातों चक्रों को एक साथ अलाइन करना। क्या होता है ये निरोबिक स्पा? जैसे हम फिजिकल बॉडी को स्नान करवाते हैं ताकि यहां की गंदगी साफ हो जाए, इसी प्रकार से एनर्जी बॉडी में जो हम दिन भर में कार्य करते हैं, जो नेगेटिव इंप्रेशन लेकर आते हैं, नेगेटिव मेमोरीज बनाते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, या लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ब्रह्मांड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, केमिकल, रेडिएशन, थॉट्स, लोगों के साथ इंटरेक्ट होने से एनर्जी एक्सचेंज, वो सारी चीजें, जितना भी ब्लैक आ गया, जितना भी इंप्योरिटीज आ गया, जितनी भी नेगेटिविटी आ गई, वो सारा का सारा निरोबिक स्पा आपकी एनर्जी बॉडी से क्लीन कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप दिन में एक बार करना तो मस्ट है, करना ही करना है, जरूरी है, अगर हो सके तो दो बार करें, एक सुबह एक शाम। जैसे हम डॉक्टर्स फिजिकल बॉडी को जब ऑपरेट करते हैं तो उसे क्लीन करते हैं पहले, ताकि कोई इंफेक्शन ना हो जाए, इसी प्रकार से ये जो एनर्जी बॉडी है इसे आपको निरोबिक स्पा के द्वारा क्लीन करना है। जब आप डेली निरोबिक स्पा करेंगे, एनर्जी बॉडी क्लीन होगी, वापिस रीबैलेंस होगी, अलाइनमेंट होगा। और अगर हम इसको एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो आप क्योंकि माइंड के द्वारा फिजिकल बॉडी को विजुअलाइज कर रहे हैं और एक एक ऑर्गन में जाके उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, तो एनएलपी भी बताता है कि माइंड के विजुअलाइजेशन से भी आपकी बॉडी की हीलिंग शुरू होनी शुरू हो जाती है। ये निरोबिक स्पा इतना अद्भुत है कि इसमें बहुत सारी साइंसेस को मिलाया गया है। कौन सी साइंसेस? राजयोग की साइंस, विजुअलाइजेशन की साइंस, एनएलपी की साइंस, चक्र विज्ञान की साइंस, उसके साथ साथ इसमें कुछ हिडन मैसेजेस हैं जो आपको सुनाई नहीं देंगे, बाइन्यूरल बीट्स हैं, जब आप कान में लगा के करेंगे ईयरफोन के साथ तो आपको कुछ बाइन्यूरल बीट्स भी सुनाई देंगी, मतलब सुनाई नहीं देंगी, उसके अंदर है वो हिडन मैसेजेस, वो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एनर्जी बॉडी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसमें नाद ध्वनि का साउंड फ्रीक्वेंसी भी डाला गया है जो आपके बॉडी के चक्रास को साउंड फ्रीक्वेंसी के द्वारा भी हील करता है। चलिए पहले स्टेप समझते हैं, 5 मिनट का इंट्रो वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद आज हम निरोबिक स्पार्क करेंगे आंखें खोलकर। आज आप आंखें खोल के कीजिए, देखिए जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। पहले हम समझेंगे निरोबिक स्पार्क के स्टेप। यस, कैसे किया जाता है निरोबिक स्पार्क देखते हैं।
अब पांचवा एक्सरसाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको हम निरोबिक स्पार्क कहते हैं। निरोबिक स्पार्क का मतलब हुआ न्यूरो सेल्स की क्लीनिंग और सातों चक्रों को क्लीनिंग, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसका स्नान। जैसे हम शरीर का स्पा करते हैं, बॉडी के स्पा करते हैं, उसी तरह ये अंदर के शरीर का स्पा है। आज तक लोगों ने शरीर को धोया है, अंदर के शरीर को नहीं धोया है, इसीलिए बीमारियां होती है। ये निरोबिक स्पा से आपका मन और आत्मा बिल्कुल निरोग हो जाएंगे और इसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ेगा, शरीर भी ऐसे हम दिन किया 21 दिन 40 दिन किया बस हो गया, नहीं, आप 10 दिन 20 दिन 40 दिन नहा के छोड़ देते हैं, मैं जिंदगी भर नहीं नहाऊंगा। नहाना एक डेली रूटीन है, इसलिए यह भी एक डेली रूटीन है, रूटीन का अंग है निरोबिक स्पा। हर एक व्यक्ति दिन में 2 बार नहाता है, आप 2 बार नहाएंगे हेल्दी रहेंगे, नहीं तो 1 बार तो जरूर नहाए, सुबह सुबह नहा लें या जब टाइम मिले, कभी भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। इस निरोबिक स्पा को 5 चरणों में किया जाता है और इसको जनरली हम अपान वायु मुद्रा में करते हैं। अपान वायु मुद्रा में आप पहले वायु मुद्रा करिए और फिर इन अंगूठे को टिप्स को मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से मिला दीजिए, छोटी वाली उंगली बिल्कुल सीधी रहेगी, है अपान वायु मुद्रा। इससे क्या होता है, अपान मुद्रा से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, वायु मुद्रा से हमारे शरीर के ब्लड के अंदर वायु का प्रेशर नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर सामान्य रहेगा, एसिडिटी कभी नहीं होगी, हार्ट बीट्स पल्स रेट सब नॉर्मल रहेंगे। इसलिए निरोबिक स्पा को हम अपान वायु मुद्रा में करते हैं। अपान वायु मुद्रा में हम बैठेंगे और हम 5 स्टेप्स में इस निरोबिक स्पा को भी करते हैं जो आप अभी देखेंगे।
तो देखा आपने अपान वायु मुद्रा में सबको करना है आज। तैयार हैं आप मेडिटेशन के लिए तो स्ट्रेट बैठ जाएं जहां पर भी आप हैं। मैं चाहूंगा आप अपना कैमरा ऑन कर लें, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी आज आप इसको सीखने के लिए करें। एक्चुअल मेडिटेशन आप घर जाकर करेंगे या कल सुबह करेंगे, लेकिन आज आप इसके बेसिक स्टेप कैसे कैसे करना है उसको सीखें। यानी जो चीजें बोली जा रही हैं, ऑडियो विजुअल कमांड आपको दी जा रही है, उसको आपको सुनना है, सुनने के साथ साथ उसे महसूस करना है। एक होता है थॉट्स, एक होता है इमोशन और एक होता है डिवोशन। थॉट्स में एनर्जी अगर 1 एनर्जी है, इमोशंस में 20 एनर्जी है और डिवोशन में 400 टाइम्स एनर्जी है। यानी कि जब हम किसी इमोशन को लेकर आते हैं तो एनर्जी का पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, और डिवोशन के साथ करेंगे तो उसमें जबरदस्त पावर आएगी। डिवोशन कब आता है, जब आप अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करते हैं गॉड के पास। सरेंडर करने के साथ उसके साथ अपने आप को कंप्लीट अटैचमेंट अटैच करते हैं, महसूस करते हैं अपना अटैचमेंट उसके साथ। तो क्या करना है, स्पाइन स्ट्रेट रखना है, शोल्डर स्ट्रेट रखना है, और जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रही हैं उन्हें समझना है। जो विजुअलाइजेशन आप देख रहे हैं, एक एक चक्र के विजुअलाइजेशन को आपको कैमरे की तरह अपने माइंड में स्टोर करना है, क्योंकि ये सारी चीजें एक बार आपके माइंड में स्टोर हो गई, आपकी इंटरनल मेमोरी में फीड हो गया, फिर जब आप केवल ऑडियो गाइडेड करेंगे तो वो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मेंटल स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप किसी सेलिब्रिटी को देख चुके हैं, उनका गाना सुन चुके हैं, कोई मूवी देख चुके हैं, उसके बारे में जैसे ही आंख बंद करते हैं तो वो सीन अपने आप माइंड पे आ जाता है, इसी प्रकार से आपको इसकी एक मेंटल मूवी अपने मेंटल स्क्रीन पर स्टोर करना है, ताकि आप कहीं पर भी केवल ऑडियो लगाकर ये सारी चीजें अंदर में विजुअलाइज कर सकें। दूसरी बात, जब आप पर्टिकुलर कलर को देखते हैं तो देखने से हमारे रेटिना के थ्रू, हमारे आईज के थ्रू वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमारे माइंड की ब्रेन के सेल्स में, माइंड की सेल्स में वाइब्रेशन आनी शुरू होती है, या यूं कहें कि वो वाइब्रेशंस हमारी एनर्जी बॉडी के उस पर्टिकुलर चक्रा को एक्टिवेट करना शुरू कर देती हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के, मेरे आपके साथ मैं भी करूंगा। आप स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, और सारी ऑडियो विजुअल्स कमांड आप देखते हुए सुनते हुए उन्हें डिवोशन के साथ करेंगे।
ओम शांति। आइए आपको एरोबिक स्पा के 5 स्टेप्स के बारे में मैं बताता हूं। एरोबिक स्पा करने के लिए सबसे पहले प्रथम चरण में 3 बार लंबा और गहरा श्वास लेंगे। आप सभी लीजिए 3 बार लंबा और गहरा श्वास। धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। अब अपनी फैली हुई एनर्जी को समेटना है दूसरे स्टेप में। आप सभी फील कीजिए कि आपकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है, न्यूरो सेल्स में नीले रंग की ऊर्जा विद्यमान है, और आप उस ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर की तरफ विड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले फील कीजिए पैर के अंगूठे से, उंगलियों से आपकी ऊर्जा विड्रॉ हो रही है। धीरे धीरे एनर्जी ऊपर की ओर आ रही है, एड़ी से होते हुए धीरे 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 ऊपर घुटने तक, घुटनों से नीचे का पोर्शन बिल्कुल रिलैक्स हो गया, धीरे धीरे घुटनों से ऊपर कमर तक, और कमर के नीचे का पोर्शन बिल्कुल रिलैक्स हो गया। धीरे धीरे आप ऊर्जा को कमर से ऊपर, धीरे धीरे नाभि तक, नाभि से ऊपर धीरे धीरे हृदय तक, हृदय से ऊपर धीरे धीरे गर्दन तक। और आप सभी फील करें कि गर्दन के नीचे का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो गया, और अब पूरी ऊर्जा को गर्दन से ऊपर विड्रॉ करके भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करें और फील करें कि मैं एक चमकता हुआ ज्योति स्वरूप सितारे की तरह बिल्कुल भ्रुकुटी के बीच में स्थित चमक रही हूं। फील कीजिए मैं ज्योति स्वरूप आत्मा विकट के बीच में हूं। अब तीसरे स्टेप में फील कीजिए कि मेरे ऊपर सिर के ऊपरी हिस्सों में सहस्त्रार चक्र है, हजार पंखुड़ियों वाले कमल की तरह वो धीरे धीरे खुल रहा है। फील करें, सिर के ऊपरी हिस्सों में एक हजार पंखुड़ियों वाला कमल का फूल खिल रहा है और ईश्वरीय ऊर्जा लेने के लिए तैयार है। अब चौथे स्टेप में दिल से परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को आप आह्वान करें। और बोले दिल से, हे प्रभु, ओ गॉड फादर, आप आइए और मेरे शरीर के अंदर जितने चक्र हैं, जितने ऊर्जा केंद्र हैं, उन सभी ऊर्जा केंद्रों को हील करें, क्लीन करें और शक्तिशाली बनाएं। और आप अनुभव करें कि स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा गॉड आपके सहस्त्रार चक्र से ठीक एक फीट की दूरी पर आ गया और वो अपनी शक्तियों को हमारे शरीर के अंदर शावर के रूप में वर्षा कर रहा है। सर्वप्रथम अनुभव करें लाल रंग की शक्ति की किरणों को, परमात्मा से लाल रंग की शक्ति की किरणें सहस्त्रार चक्र पर झरने की तरह गिर रही है। धीरे धीरे ब्रेन से होते हुए, चेहरे से होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मूलाधार चक्र जो एनस और जेंटल्स के बीच में है, उदारोपस्थ के बीच में है, वहां पर केंद्रित हो रही है। शक्ति की किरणें हमारे मूलाधार चक्र में जाकर कुंडलनी को जागृत कर रही है। और आप फील करें कि मूलाधार चक्र अपने सामान्य गति से घूमने लगा, लाल रंग की ऊर्जा वहां पर केंद्रित हो रही है और लाल रंग की ऊर्जा हड्डी और मांसपेशियों में फैल रही है। परमात्मा की किरणों से हमारा मूलाधार चक्र मजबूत हो रहा है और मजबूत हो गया। पूरी शरीर के अंदर शक्ति आ गई और अब मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ये शरीर भी परमात्मा की शक्ति से भरपूर हो गया है। लाल रंग की किरण मेरे हड्डी और मांसपेशियों के अंदर फैल गई है। अंतर शरीर लाल रंग का हो गया है और मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। अब फील करें, अनुभव करें परमपिता परमात्मा से ऑरेंज कलर नारंगी रंग की किरणें झरने की तरह गिरने लगी और धीरे धीरे ब्रेन सेल्स से होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, रीढ़ की हड्डियों के अंदर स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु होता है उससे गुजरते हुए नाभि से 2 इंच नीचे स्थित स्वाधिष्ठान चक्र में केंद्रित हो जाती है और स्वाधिष्ठान चक्र अपनी सामान्य गति से घूमने लगता है और अनुभव करें कि ऑरेंज कलर की किरणें स्वाधिष्ठान चक्र में केंद्रित होकर के हमारे शरीर के अंदर जो जल तत्व है उसके अंदर फैलने लगे, हमारे रक्त कणों में फैलने लगे, ब्लड सेल्स परमात्मा से आने वाली पवित्रता की किरणों से शुद्ध होने लगे और शरीर के पूरा जल तत्व ब्लड सेल्स नारंगी रंग की किरणों से भर गया और पवित्र बन गया, शुद्ध हो गया। परमात्मा की पवित्रता की किरणों से मेरा मन और शरीर के जल तत्व दोनों ही पवित्र हो गए। अंत शरीर नारंगी रंग का हो गया है और मैं अपने आप को श्रेष्ठ पवित्र आत्मा के रूप में अनुभव कर रहा हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। अब परमात्मा से सुख की किरणें आ रही है, जॉय और हैप्पीनेस की किरणों को परमात्मा झरने के रूप में गिरा रहा है। सुनहरी पीले रंग की किरणें परमात्मा से आ रही है और ब्रेन के अंदर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे ये किरणें स्पाइनल कॉलम से होते हुए नाभि चक्र में प्रवेश कर रही है। नाभि में स्थित मणिपुर चक्र में केंद्रित हो रही है। और अनुभव करें कि नाभि चक्र सामान्य गति से घूमने लगे। सुनहरे पीले रंग की किरणें नाभि के पास केंद्रित होकर के हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व को शक्तिशाली बना रही है। हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व जो हमारे शरीर को एक तापमान में स्थित रखता है, निरोग रखता है, वो अग्नि तत्व हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल सामान्य और शुद्ध हो रहा है। सुनहरे पीले रंग की किरणें हमारी पाचन तंत्र को भी, जठराग्नि को भी शक्तिशाली बना रहा है। अनुभव करें पीले रंग की किरणों का प्रवेश पूरे पाचन तंत्र में हो रहा है और पूरे शरीर के अंदर अग्नि तत्व को शुद्ध बना रहा है और अंत शरीर सुनहरे पीले रंग का हो गया। अनुभव करें मैं सुख स्वरूप संतुष्ट आत्मा हूं। आई एम जॉयफुल सोल, हैप्पीएस्ट सोल। अब साक्षात परमात्मा से अनुभव करें, प्रेम की किरणें गिर रही है, हरे रंग की प्रेम की किरणें परमपिता परमात्मा से झरने के रूप में गिर रही है, ब्रेन के अंदर प्रवेश करके धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हृदय चक्र में प्रवेश कर रही है। अब हृदय चक्र भी सामान्य गति से घूमने लगा, हृदय चक्र में हरे रंग की प्रेम की किरणें केंद्रित हो रही है, और हरे रंग की किरणें हमारे शरीर में स्थित वायु तत्व को शुद्ध कर रहा है। हमारे शरीर के वायु तत्व ब्लड के ऊपर सामान्य दबाव यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, और हरे रंग की प्रेम की किरण हृदय के अंदर धमनियों को भी शुद्ध और कोलेस्ट्रॉल से मुक्त कर रहा है। हमारे श्वसन तंत्र में भी हरे रंग की किरणें प्रवेश कर रही है, और जितने भी ब्रोंकियोल्स हैं सब क्लीन शुद्ध हो रहे हैं। मेरा हृदय प्रभु प्रेम से भर रहा है, अनुभव कर इस प्रभु प्रेम को, प्रभु का प्रेम दिल में समा गया है, मेरा दिल सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रख रहा है। अब मेरा दिल सबके लिए परमात्मा से दुआएं मांगता है, हे प्रभु सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हों, सभी लंबी वायु वाले हों, सभी सदा खुश रहे संतुष्ट रहे, यही हमारी मंगल कामना है। मेरे दिल से हर एक के प्रति दुआएं निकल रही है, राम की भावना निकल रही है, और मेरे दिल से प्रभु प्रेम फैल रहा है। अंत शरीर पूरे हरे रंग का प्रभु की किरणों से भर गया है, रोम रोम में प्रभु प्रेम फैल चुका है, और मैं अपने आप को प्रेम स्वरूप आत्मा के रूप में अनुभव कर रहा हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, अब फील करें अनुभव करें परमात्मा से आसमानी रंग की शांति की किरणें झरने की तरह गिर रही है, प्रेम के ऊपर झरने की तरह आ रही है, और धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रही है, और स्पाइनल कॉलम से होते हुए विशुद्धि चक्र गले में स्थित विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रही है, आसमानी रंग की शांति की किरणें विशुद्धि चक्र में केंद्रित हो रही है, और ये शांति की किरणें हमारे इनर स्पेस को अंत आकाश तत्व को बिल्कुल शांत कर रही है, हमारे शरीर के पूरे अंतरिक्ष अंतःकरण में जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, वो बिल्कुल शांत हो गया है। पूरा शरीर शांति की किरणों से भरपूर, मैं शांत स्वरूप आत्मा के रूप में अनुभव कर रहा हूं। मेरा अंतर शरीर आसमानी रंग की किरणों से भरपूर हो गया है। शरीर की एक एक कोशिकाएं शांत हो गई है, मन शांत हो गया है और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब परमात्मा शिव नीले रंग की किरणें आ रही है, एक ज्ञान की किरणें हैं जो आत्मा के बुद्धि के बुद्धि को प्रखर बना रही है, और एक किरणें नीले रंग की किरणें ब्रेन से होते हुए सीधे आज्ञा चक्र में स्थित हो रही है। आत्मा के स्थान निकुटी के बीच आज्ञा चक्र स्थित है, जहां से हम पूरे शरीर की कोशिकाओं को आज्ञा देते हैं और उनसे कार्य कराते हैं। परमात्मा के ज्ञान की किरण हमारे मन को प्रकाशित कर रही है। मेरा मन अज्ञान के अंधेरे से मुक्त हो गया, ज्ञान के प्रकाश की किरणें मन को प्रकाशित कर दे। हमारा मन तत्व मन मना भाव में स्थित हो गया और मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, आई एम इनलाइटेंड सोल। अब परमात्मा से बैंगनी रंग की किरणें की बारिश हो रही है, परमात्मा हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है, आशीर्वाद की बैंगनी रंग की किरणें झरने की तरह सहस्त्रार चक्र के ऊपर गिर रही है और पूरा सहस्त्रार चक्र आनंद की किरणों से भरपूर हो गया। मन और बुद्धि उस आत्मा के पूरे कंट्रोल में स्थित है। मेरा मन बिल्कुल शांत और बुद्धि परमात्मा से आशीर्वाद की किरणों से आनंदित हो गई और मैं आत्मा परम आनंद का अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा परमानंद स्वरूप हूं, आई एम ब्लिसफुल सोल। परमात्मा से सर्व शक्तियां हमें मिल गई है, हमें शरीर के सारे न्यूरो सेल्स क्लीन और ऊर्जा से भरपूर हो गए हैं। सारे ऊर्जा केंद्र हील हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं और पावरफुल बन गए हैं। दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद निकल रहा है, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आपको दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपने अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा उस आत्मा को भरपूर किया, शरीर के ऊर्जा केंद्रों को स्वस्थ बनाया। आपको दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब मैं अपने सहस्रार चक्र को परमात्मा की ऊर्जा को लेकर के बंद कर रहा हूं। और आज्ञा चक्र में स्थित नीले रंग की ऊर्जा को पूरे न्यूरो सेल्स में फैला रहा हूं। ये पांचवा स्टेप है। अब अनुभव कर रहा हूं कि नीले रंग की ऊर्जा हमारे न्यूरो सेल्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा फैलने लगी। धीरे धीरे चेहरे के अंदर, गर्दन में, दोनों बाहों में, गर्दन से नीचे धीरे धीरे हृदय में, फेफड़ों में, धीरे धीरे पेट में, पेट के निचले हिस्सों से होते हुए दोनों पैरों में, घुटनों से होते हुए पैर के निचले हिस्सों में, वो एड़ी से होते हुए पैर के उंगलियों तक, अंगूठे तक पहुंच गए। अंत शरीर नीले रंग के ऊर्जा से भरपूर हो गया। पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया, एनर्जेटिक हो गया, डायनेमिक हो गया। अपना तीन बार लंबा और गहरा सांस लेकर के इस शरीर में अपने आप को आत्मा के रूप में समझें और फील करें परमात्मा भी हमारे दुकुटी के बीच में अपनी ऊर्जा के द्वारा विद्यमान है। मैं कंबाइंड स्वरूप में परमात्मा के साथ में हूं और उसकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है, जिसका मैं मालिक हूं, कंट्रोलर हूं। इस रूप में अपने आप को अनुभव करें और पूरे टीम के लिए इसी रूप स्वरूप में स्थित होकर के कर्मयोगी बने। ओम शांति शांति शांति।
धीरे से वापस कॉन्शियसनेस में आ जाएं। कुछ चीजें निरोबिक स्पा के बारे में और समझिए। निरोबिक स्पा जब आप करते हैं इस मुद्रा में करना है, ठीक है, अपान वायु मुद्रा हिरण बनाकर। इसके बाद ये दूसरा पार्ट, टंग। टंग को क्या करना है, उल्टा करके तालू से चिपका देना है ऐसे, और माउथ को बंद रखना है, मुंह को बंद रखना है। ये क्यों? क्योंकि जो हमारी मेरिडियंस होती हैं, सेंट्रल मेरिडियन, वो पीछे से जाकर सेंटर से आते हुए ऐसे मूव करती है, तो बीच में डिसकनेक्शन यहीं पर होता है, एनर्जी चैनल यहां पर डिसकनेक्ट हो जाते हैं टंग की वजह से, गैप यहीं पर है। तो जब हमें मेडिटेशन करना है तो अपने को एनर्जी मेडिटेशन के दौरान टंग को ऊपर चिपका देना है तालू के साथ। अगर आप ऐसा करेंगे, धीरे धीरे इसको पीछे ले जाने की कोशिश करें, जितना आप पीछे ले जा पाएंगे उतना ही ऊपर से पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा और अमृत जिसको बोलते हैं वो धीरे धीरे ट्रिकलिंग होना शुरू होगा। केचरी मुद्रा है ये। पुराने वैदिक समय में या ऋषि मुनियों के समय जो शिष्य होते थे वो अपनी जीभ को लंबा करते थे बीच बीच में खींचकर, क्यों? ताकि जीभ बड़ी हो जाए और जब वो खेचरी मुद्रा बनाए पीछे ले जाकर, तो पीछे तालू के साथ एक पॉइंट होता था जहां पर वो कनेक्ट करते थे और जिससे सीधा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता था और एक येलोइश कलर का पदार्थ उनके नर्वस सिस्टम में स्क्रीट होता था जिसे वो अमृत बोलते थे, उससे वो ब्लिस की फीलिंग आती थी। तो केचरी मुद्रा भी जरूरी है, मैं आपको केचरी मुद्रा का एक वीडियो भी शेयर करूंगा ग्रुप में, उसे देखिएगा। फिर मुद्रा हो गई, केचरी मुद्रा यहां की हो गई। सांसों को जहां जहां पर जिस चक्र में मेडिटेशन करवाया जा रहा है अपने श्वास को वहां पर लेकर जाएं, यानी कॉन्शियसनेस, एक अपना ब्रेथ और दूसरा कॉन्शियसनेस, हमेशा वहीं वहीं पर सोचे जहां जहां पर आपको वो चक्रों के बारे में एनर्जी को लेकर जाना है। जब आप इस तरीके से अपनी सजगता को, अपनी कॉन्शियसनेस को और अपने ब्रेथ को वहां पर लेकर जाएंगे तो एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं आएंगी और आपका ध्यान बहुत ज्यादा डीप होगा। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे एक एक स्टेप मूव होता जाएगा, फिर सांस यहां से लेकर यहां तक चलेंगे लास्ट में। एक पार्ट जो ये चक्र होते हैं नीचे से लेकर जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ये रूट चक्र, इसका जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। इसका सैक्रल तत्व का, सैक्रल चक्र का है जल तत्व, इसका है अग्नि, इसका है वायु, इसका है आकाश, और इसके बाद इसका है थॉट्स और इसका है लाइट। नीचे से ऊपर की तरफ जब आप लेके जाते हैं एनर्जी को तो हल्कापन महसूस करेंगे, क्योंकि पृथ्वी सबसे भारी होती है, जल उससे हल्का, अग्नि उससे हल्की, वायु उससे हल्का, आकाश उससे भी हल्का, और ये थॉट्स उससे भी हल्के, लाइट सबसे हल्की। इसको बोलते हैं करंट ऑफ लिब्रेशन। अगर आप अपने चक्रों में करंट को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में लाइफ फोर्स एनर्जी को इस तरीके से मूव करते हैं कॉन्शियसनेस के साथ, डेली जब आप ऐसा करेंगे तो आप लिबरेट होते जाएंगे, गॉड के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, आप हल्कापन महसूस करेंगे। यानी अगर आप डेली करंट को केवल इस डायरेक्शन में लेके जाएं तो आप देखिए धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी ज्यादा डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, आप लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, गॉड के साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। इसको वो लोग करें जो लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हैं। अब उल्टा, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी लाइट से थॉट, थॉट से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और पृथ्वी, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो भारीपन महसूस होगा और इसे बोलते हैं करंट ऑफ मैनिफेस्टेशन। यानी कि गॉड से मैसेज लीजिए, यहां पर उसे समझिए, इंप्लीमेंट कीजिए और फिर उसको धीरे धीरे सब पॉइंट्स पे ले जाते हुए ये अपने वचन में लेकर आए, उसे फीलिंग बनाए, उसे मैनिफेस्ट करना शुरू करें और उसे एक्शन में कन्वर्ट करें। यह है करंट ऑफ मैनिफेस्टेशन। निरोबिक स्पा में जब आप शुरुआत करते हैं तो एनर्जी को हम नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं यहां पर, फिर एक एक चक्र को एक्टिवेट करते हैं और लास्ट में फिर एनर्जी को नीचे लेकर आते हैं। इट मींस इसमें करंट ऑफ लिब्रेशन और करंट ऑफ मैनिफेस्टेशन दोनों ही एक साथ हो जाते हैं और यह तरीका है बैलेंस्ड लाइफ जीने का, मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को एंजॉय करने का। तो निरोबिक स्पा बहुत ही शानदार मेडिटेशन है, बिगिनिंग के लिए भी, एडवांसमेंट के लिए भी। यानी अगर आप कितने भी एडवांस हो जाएं मेडिटेशन में, निरोबिक स्पा तब भी आपको करना है। अभी आप इसको देख के करें, फिर जब आपको यह याद हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, फिर आप कहीं पर भी बैठकर 5 मिनट में 10 मिनट में 15 मिनट में जितना समय आपके पास है उतने समय में आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी अगर आप बहुत हरी में हैं, वरी में हैं, बहुत जल्दी में हैं और आपके पास समय नहीं है, जब आप स्नान ले रहे हैं उस समय निरोबिक स्पा कर सकते हैं कि आप एक डब्बे में पानी लिया आपने मग में और मग को जब आप ऊपर डाल रहे हैं आपको मन ही मन विजुअलाइज करना है कि ये रेड कलर की लाइट को मैं, रेड कलर को मैं अपने ऊपर डाल रहा हूं, फिर अगला मग ऑरेंज, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, डीप इंडिगो और वायलेट। इतना शॉर्ट मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं जब आप हड़बड़ी में हो, लेकिन जब आपके पास समय है इसे कंप्लीट करें। जब आप इसे याद कर लेंगे, सीख जाएंगे, तो मात्र 10 से 15 मिनट में कहीं पर भी बैठ कर भी कर पाएंगे और लेट कर भी कर पाएंगे, और 10 से 15 मिनट में एनर्जी चार्ज हो जाएगी। फिर आप इसको शॉर्ट शॉर्ट पार्ट में स्प्लिट कर लें, एक एक पार्ट। अगर कहीं पर किसी मीटिंग में जाना है, वहां पर कम्युनिकेशन की जरूरत है, डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट हो, इसको कर लें, एक चक्र को कर लें। गुस्सा आ रहा है, इस चक्र को कर लें। विल पावर की जरूरत है, इसको कर लें। कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, रूट चक्र को कर लें। यानी छोटे छोटे निरोबिक्स में इसको डिवाइड कर लें। ऊपर से गॉड के साथ कनेक्ट होना है, उस कलर की लाइट को डायरेक्ट विजुअलाइज करना है। जब आप शॉर्ट में स्प्लिट कर दिए हैं, उस समय आपको एनर्जी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका कनेक्शन डेली बन गया है। डेली आप निरोबिक्स पास सुबह कर रहे हैं। दिन भर में जब भी गुस्सा आए, इमीडिएट अपनी उस चक्र की मुद्रा में बैठे, इमीडिएट गॉड को याद करें, उस लाइट को याद करें, उसमें से वो पर्टिकुलर लाइट को सीधा अपने चक्र में महसूस करें। ये है छोटे छोटे निरोबिक्स उसको स्प्लिट करने के। इस तरीके से आप निरोबिक्स पा को मल्टीपल तरीके से कहीं पर भी कभी भी यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों को भी करवाएं, बड़ों को भी करवाएं, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी करवाएं। अगर आप पूरी फैमिली एक साथ बैठकर इस निरोबिक्स पा को एक साथ करती हैं, तो पूरे घर का ऑरा चार्ज हो जाता है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स नहीं कर रहे हैं, आप जब निरोबिक्स पा कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को वर्चुअल फॉर्म में अपने आसपास महसूस करें और उनको, उनकी एनर्जी बॉडी को बिलाकर उनको आसपास में बिठा लें और गॉड से कहें कि जो एनर्जी आप मुझे दे रहे हैं, वही हीलिंग एनर्जी आप इनके ऊपर भी उतनी ही मात्रा में दें। यानी आपने बैठे बैठे अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो कहीं पर भी है, हो सकता है आपके घर में हो सकता है वो अमेरिका में बैठा हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में हो, कहीं पर भी हो, आप उसे डिस्टेंट हीलिंग भेज सकते हैं। इस तरीके से आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम मुद्रा विज्ञान सीखेंगे, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, कैसे हम मुद्राओं को यूज करेंगे।